एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
मैं हूँ मेजबान एक
और मैं हूँ मेजबान दो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी सी मुश्किल किताब पर, मैरिलिन रॉबिन्सन की रीडिंग जेनेसिस।
हाँ, जेनेसिस मतलब बाइबल की पहली किताब। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग इसे या तो बिल्कुल शाब्दिक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं
या फिर उसे बस एक पुरानी कहानी मानकर छोड़ देते हैं, है ना?
बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है मैरिलिन रॉबिन्सन का जो नजरिया है वो एकदम ताजगी भरा और जरूरी है। वो कहती हैं कि अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से, इसकी साहित्यिक गहराई को, इसकी धार्मिक जटिलताओं को समझें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग उभरती है।
हाँ, एक ऐसे ईश्वर की तस्वीर जो सुसंगत है, जिसमें करुणा है।
और ये आज के समय में जब धर्म ग्रंथों पर इतनी बहस होती है, इतना ध्रुवीकरण है, उसमें ये अप्रोच बहुत मायने रखता है, नहीं?
सही कहा, ये हमें एक तरह से शांत होकर गहराई से सोचने का रास्ता दिखाता है। ये समझने में मदद करता है कि ये पुरानी कहानियां आज भी हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि रॉबिन्सन के लेंस से जेनेसिस की कुछ परतों को खोलें और देखें कि ये हमें ईश्वर, इंसानियत और शायद हमारे अपने जीवन के बारे में क्या नया सिखा सकती है।
तो सबसे पहले, मैरिलिन रॉबिन्सन है कौन, मतलब इस किताब को लिखने वाली शख्सियत?
हाँ, ये जानना जरूरी है। वो अमेरिका की बहुत ही सम्मानित लेखिका हैं, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी। लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नाम है।
बिल्कुल, उनके नॉवेल्स, खासकर वो गिलियार्ड वाली सीरीज जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला, वो तो कमाल की हैं। इंसानी रिश्तों और भावनाओं की गहरी समझ है उनमें।
लेकिन बात सिर्फ लिटरेचर की नहीं है। जेनेसिस पर लिखने के लिए उनमें धर्मशास्त्र की भी गहरी समझ है, खासकर प्रोटेस्टेंट विचार, जॉन कैल्विन, इन सब में उनकी काफी रुचि रही है।
हाँ, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें खास बनाता है, मतलब साहित्य की बारीकियों को समझने वाली सेंसिटिविटी और धर्मशास्त्र का गहरा ज्ञान, ये दोनों चीजें एक साथ कम ही मिलती हैं।
फई, तो वो जेनेसिस को न सिर्फ एक साहित्यिक टेक्स्ट की तरह पढ़ती हैं, न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह, बल्कि दोनों नजरियों को मिलाकर।
बिल्कुल, वो उस बहस से आगे जाती हैं कि भाई, या तो इसे अक्षरशः सच मानो या फिर पूरी तरह खारिज कर दो। वो कहती हैं, रुको, जरा ध्यान से पढ़ो, एक बौद्धिक मजबूती के साथ और एक आध्यात्मिक गहराई के साथ।
तो ये किताब रीडिंग जेनेसिस असल में करती क्या है? जैसा हमने कहा, ये कोई हिस्टोरिकल डिबेट नहीं है कि जेनेसिस में लिखी बातें वैज्ञानिक रूप से सच हैं या नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक क्लोज रीडिंग है, मतलब बहुत ध्यान से शब्द दर शब्द कहानी की परतों को खोलना।
हाँ, रॉबिन्सन हमें एक तरह से न्योता देती हैं कि हम अपने आजकल के जो पूर्वाग्रह हैं, हमारी जो सोच है, उसे थोड़ी देर साइड में रखें
और इस पुराने टेक्स्ट को उसकी अपनी शर्तों पर सुने, उसकी भव्यता, उसकी जटिलता, उसके रहस्यों को महसूस करें।
ये किताब उन लोगों के लिए खास तौर पे मददगार हो सकती है जो पुराने नियम की कुछ कहानियों से, जैसे वो बाढ़ वाली कहानी है या इसाक की बली वाली, उनसे थोड़ा असहज महसूस करते हैं।
हाँ, और उन लोगों के लिए भी जो शायद सोचते हैं कि भाई, ये कहानियां आज के जमाने में कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं, और उनके लिए भी जो बस एक अच्छी गहरी कहानी पढ़ना चाहते हैं।
रॉबिन्सन का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, जो पूरी किताब में बार बार आता है, वो ये है कि जेनेसिस का जो मूल संदेश है वो ईश्वर की अपार कृपा और भलाई का है।
हाँ, वो कहती हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ईश्वर लगातार इंसानों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जो अनुबंध यानी कवनेंट पर आधारित है।
और ये अनुबंध कोई लेन देन का सौदा नहीं है, यानी कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ईश्वर की तरफ से एक तरफा अटूट वादा है। ईश्वर खुद को बांधते हैं।
और ये तब भी कायम रहता है जब इंसान बार बार गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, हिंसा करते हैं। रॉबिन्सन ये दिखाती हैं कि ईश्वर का जो चरित्र उभरता है वो सख्त या गुस्सैल होने के बजाय धैर्यवान है, करुणामय है।
बिल्कुल, वो अपनी बनाई हुई दुनिया और इंसानों से गहरा लगाव रखते हैं। किताब में सृष्टि की प्रकृति, ईश्वर की छवि में इंसान के बनने का मतलब क्या है, मतलब गरिमा, चेतना, नैतिक जिम्मेदारी।
हाँ, और अनुबंध की प्रकृति, और फिर इब्राहिम, याकूब, यूसुफ जैसे किरदारों की जो जटिल मनोवैज्ञानिक यात्रा है, इन सब पर बहुत गहराई से बात की गई है।
चलिए, अब कुछ खास कहानियों पर रॉबिन्सन का नजरिया थोड़ा और पास से देखते हैं। सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अहम बातें शेयर कर सकते हैं। शुरुआत सृष्टि और द फॉल यानी पतन से करते हैं, जेनेसिस 1 से 3।
हाँ, द फॉल मतलब आदम और हव्वा का वो वर्जित फल खाना, इसे अक्सर एक बड़ी गलती और उसकी बहुत बड़ी सजा के तौर पर देखा जाता है।
बिल्कुल, लेकिन रॉबिन्सन यहाँ एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वो इसे सजा की कहानी की बजाय चेतना के जन्म की कहानी के रूप में देखती हैं। अच्छे और बुरे का ज्ञान पाना अपने सारे बोझ के साथ, असल में यही चीज है जो हमें इंसान बनाती है।
अच्छा, तो मतलब उनका अदन से निकाला जाना सजा नहीं थी?
रॉबिन्सन के अनुसार ये मुख्य रूप से सजा नहीं बल्कि एक परिणाम था, एक दुखद लेकिन जरूरी पड़ाव। ईश्वर उन्हें जीवन के पेड़ से इसलिए दूर रखते हैं ताकि वो अपनी इस नई गिरी हुई हालत में हमेशा के लिए न फंस जाएं।
और वो जो उन्हें खाल के कपड़े पहनाते हैं?
हाँ, वो क्रोध का नहीं बल्कि एक तरह की पेरेंटल केयर, एक अभिभावक जैसी कोमलता का संकेत है, जैसे कोई मुश्किल बदलाव में मदद कर रहा हो। ये नजरिया पूरी तरह बदल देता है ना, क्रोध से करुणा की ओर।
ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर केन और हाबिल की कहानी आती है, जेनेसिस 4, पहली हत्या। यहाँ ईश्वर का रवैया कैसा है?
यहाँ भी दिलचस्प बात है। देखिए, हत्या से ठीक पहले ईश्वर केन को चेतावनी देते हैं। उसे कहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू पाए। पाप दरवाजे पर दुबका है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है।
हाँ,
रॉबिन्सन कहती हैं कि ये दिखाता है कि ईश्वर इंसान की आज़ादी का सम्मान करते हैं, भले ही इंसान उसका भयानक इस्तेमाल करे। और फिर सजा के बाद भी जो केन का निशान है,
हाँ वो क्या है?
वो सिर्फ शर्मिंदगी का निशान नहीं है बल्कि एक तरह की दैवीय सुरक्षा भी है ताकि कोई उससे बदला ना ले। तो ये फिर से ईश्वर की एक रहस्यमय कृपा दिखाता है जो न्याय के साथ साथ चलती है।
इसके बाद नूह और बाढ़ की कहानी, जेनेसिस 6-9। इसे तो अक्सर ईश्वर के क्रोध का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।
हाँ, और रॉबिन्सन इसी आम धारणा को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि टेक्स्ट पर ध्यान दे। टेक्स्ट ईश्वर के क्रोध से ज्यादा उनके दुख और दर्द पर जोर देता है। दुनिया में फैली हिंसा और भ्रष्टाचार को देखकर ईश्वर का दिल टूट जाता है, उन्हें पीड़ा होती है।
तो बाढ़ सिर्फ सजा नहीं?
सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक तरह से ब्रह्मांडीय दुख का इजहार है, एक बहुत ही दर्दनाक रीसेट जो ईश्वरीय पीड़ा से जन्मा है। और बाढ़ के फौरन बाद ईश्वर नूह के साथ एक अनुबंध करते हैं, नोआहिक कवेनेंट। इंद्रधनुष उसका प्रतीक है।
और यह अनुबंध कैसा है? ये भी एक तरफा है?
बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। ये अनुबंध पूरी तरह एक तरफा है। ईश्वर खुद वादा करते हैं कि वो फिर कभी पृथ्वी को इस तरह पानी से नष्ट नहीं करेंगे। ये वादा इंसानों के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर नहीं करता। सारी जिम्मेदारी ईश्वर अपने ऊपर लेते हैं।
ये तो जबरदस्त बात है। मतलब रिश्ता कृपा पर आधारित होगा, इंसानी काम पर नहीं।
सही कहा। फिर इब्राहिम की कहानी आती है, जेनेसिस 12 से आगे। ईश्वर उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं, जमीन देंगे, अनगिनत वंशज होंगे, पूरी दुनिया को उनके जरिए आशीर्वाद मिलेगा।
और इब्राहिम ने तब तक ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं। रॉबिन्सन फिर यही कहती हैं, ये वादे भी शुद्ध कृपा हैं, ईश्वर की तरफ से एक उपहार, कोई सौदा नहीं। और इब्राहिम खुद भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं थे, उन्होंने भी गलतियां की, शक किया, झूठ भी बोला, लेकिन ईश्वर अपने वादे पर कायम रहे।
और इसमें वो इसहाक की बलि वाली कहानी आखेदा भी आती है, जो बहुत लोगों को परेशान करती है।
हाँ, और रॉबिन्सन उसे ईश्वर की क्रूरता का सबूत नहीं मानती। वो उसे आस्था, त्याग और ईश्वर की प्राथमिकताओं के बारे में एक बहुत गहरा बल्कि भयानक रहस्य कहती है। और कहानी का अंत देखिए, ईश्वर खुद एक विकल्प मेढ़ा प्रदान करते हैं। रॉबिन्सन के लिए ये मानव बलि का स्पष्ट खंडन है।
तो ये कहानी दिखाती है कि ईश्वर की निष्ठा इंसानी कमजोरियों के बावजूद बनी रहती है।
बिल्कुल। और फिर याकूब की कहानी। याकूब तो जाने ही जाते हैं धोखेबाज के तौर पर।
हाँ, उन्होंने अपने भाई एसाव को धोखा दिया, अपने ससुर लाबान को धोखा दिया।
और रॉबिन्सन कहती हैं, हाँ ये तो पॉइंट है, ईश्वर का चुनाव नैतिकता के स्कोर कार्ड पर आधारित नहीं है, ये कृपा का एक संप्रभु कार्य है। ईश्वर ने याकूब को चुना और उसे बदला, उसे याकूब धोखेबाज से इज़राइल जो ईश्वर से संघर्ष करता है बनाया।
वो पेनियल में कुश्ती वाली घटना?
हाँ, जहाँ वो ईश्वर से लड़ता है और घायल होकर भी आशीष पाता है। ये दिखाता है कि ईश्वर की योजना अक्सर ऐसे ही टेढ़े मेढ़े इंसानी रास्तों से पूरी होती है।
और आखिर में यूसुफ की कहानी, जेनेसिस 37-50। ये तो जैसे इन सारी थीम्स का क्लाइमैक्स है।
बिल्कुल। यूसुफ, जिसे उसके ही भाइयों ने नफरत में बेच दिया, वो कितना दुख और अन्याय सहता है, लेकिन उसका चरित्र मजबूत रहता है। वो हर हाल में ईश्वर पर भरोसा रखता है।
और कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट वो है जब वो मिस्र में एक बड़ा अधिकारी बन जाता है और अपने भाइयों का सामना करता है।
हाँ, और उसका वो मशहूर कथन, तुमने तो मेरे लिए बुरा सोचा था पर परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया कि बहुत से लोगों के प्राण बचाए। रॉबिन्सन कहती हैं कि ये सिर्फ यूसुफ की कहानी नहीं बल्कि पूरी जेनेसिस का, शायद पूरी बाइबल का धार्मिक सार है।
मतलब ईश्वर इतिहास को नियंत्रित करते हैं और वो इंसानों की सबसे बुरी हरकतों को भी अपनी भलाई की योजना में बदल सकते हैं।
बिल्कुल, यही है प्रोविडेंस यानी ईश्वरीय विधान का सिद्धांत जैसा रॉबिन्सन उसे समझती हैं। कहानी का अंत बदला लेने पर नहीं बल्कि माफी, सुलह और परिवार के बचने पर होता है। ये दिखाता है कि ईश्वर सबसे मुश्किल और दर्दनाक हालात में भी अपना काम कर रहे होते हैं।
तो इस सारी गहरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें, कुछ टेकअवेज निकालने हों तो वो क्या होंगे? रॉबिन्सन की जेनेसिस की रीडिंग से सबसे अहम संदेश क्या मिलते हैं?
मेरे ख्याल में सबसे पहला और सबसे सेंट्रल पॉइंट तो यही है, ईश्वर का स्वभाव अत्यधिक परोपकारी और भला है। रॉबिन्सन बार बार उस घिसी पिटी छवि को तोड़ती हैं कि पुराने नियम का ईश्वर सिर्फ गुस्सेल और सजा देने वाला है।
हाँ, वो दिखाती हैं कि जेनेसिस का ईश्वर सृष्टि करने में उदार है, इंसानी पाप पर दुखी होता है, जो पात्र गलतियां करते हैं उनके प्रति धैर्य रखता है और अपने वादों को लेकर अटूट है।
बिल्कुल। दूसरा अहम पॉइंट है इंसान का ऊंचा दर्जा और उसकी गरिमा। ईश्वर की छवि में बनाया जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि इंसानों में चेतना है, नैतिक चुनाव करने की आजादी है, जिम्मेदारी है और ईश्वर के साथ एक खास रिश्ता बनाने की क्षमता है।
ईश्वर हमसे मतलब जिम्मेदार नैतिक एजेंट की तरह बर्ताव करते हैं। ये बात हमें खुद को और दूसरों को देखने का नजरिया बदल सकती है, खासकर हमारे समाज में जहां लोगों को अक्सर उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कमतर देखा जाता है। ये विचार बहुत शक्तिशाली है।
ईश्वर जो वादे करते हैं, चाहे नूह से हों या इब्राहिम से, वो हमारी परफॉर्मेंस पर निर्भर नहीं करते, वो ईश्वर की अपनी वफादारी पर टिके हैं।
ये हमें ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को लेन देन की तरह देखने से रोकता है ना?
बिल्कुल। चौथा पॉइंट है एक जटिल दुनिया में ईश्वरीय विधान। जेनेसिस ये दिखाता है कि ईश्वर की बड़ी योजना इंसानी गड़बड़ियों, ईर्ष्या, धोखे के बावजूद नहीं बल्कि कई बार उनके माध्यम से काम करती है,
जैसे याकूब की चालबाजी या यूसुफ के साथ हुआ विश्वासघात। अंत में वो भी ईश्वर की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं।
हाँ, ये हमें मुश्किल समय में भी एक उम्मीद दे सकता है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट, जिसे हमने शुरू में भी कहा था, जेनेसिस एक गहरा साहित्य है जिसमें मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद है। इसे साहित्यिक संवेदनशीलता से पढ़ा जाना चाहिए।
पात्र जटिल हैं, उनकी भावनाएं सच्ची लगती हैं। इसे सिर्फ नियमों की किताब या इतिहास की तरह नहीं बल्कि महान साहित्य की तरह पढ़ने से अर्थ की नई परतें खुलती हैं।
रॉबिन्सन की किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो सच में रुक कर सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, कुछ कोट्स ऐसे, उनका ये कहना कि द फॉल यानी पतन को एक छोटे अपराध और बड़ी सजा की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि उस पल की तरह जब इंसान ने विवेक पाया। अच्छे और बुरे का ज्ञान अपने सभी बोझों के साथ वही है जो हमें असल में इंसान बनाता है, और ईश्वर की क्रियाएं एक अभिभावक की तरह हैं जो एक मुश्किल लेकिन जरूरी बदलाव में साथ दे रहे हैं।
ये पूरी कहानी को सजा से हटाकर करुणा और एक मनोवैज्ञानिक समझ की ओर ले जाता है ना?
बिल्कुल। या फिर ये विचार, ईश्वर जो अनुबंध यानी कवनेंट्स करते हैं वे कभी आपसी जिम्मेदारी पर आधारित सौदे नहीं होते, वे एक तरफा वादे होते हैं, शुद्ध कृपा के उपहार। ईश्वर कहते हैं मैं ये करूंगा, खुद को मानवता से बांधते हुए और वफादारी का बोझ पूरी तरह ईश्वरीय पक्ष पर डालते हुए।
ये ईश्वर के साथ किसी भी तरह के लेन देन वाले रिश्ते के विचार को खारिज करता है। ये पूरी तरह कृपा पर आधारित है।
और ये भी बहुत बाफुल है, ये लगातार शिकायत कि पुराने नियम का ईश्वर क्रोधी और सजा देने वाला है पाठ की साफ भाषा को नजरअंदाज करती है, जो बार बार ईश्वर के दुख, उनके दर्द और उनकी सृष्टि की हिंसा पर उनके गहरे शोक का वर्णन करती है।
हाँ, ये उस स्टीरियोटाइप को सीधे सीधे चुनौती देता है, कहता है कि टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ।
और आखिर में यूसुफ का वो कथन, तुमने मेरे प्रति बुराई का इरादा किया परंतु परमेश्वर ने उसी में भलाई का इरादा किया, ये एक ऐसे ईश्वरीय विधान का दावा करता है जो इतना संप्रभु है कि वो सबसे बुरी इंसानी नफरत को भी अपनी मुक्ति की कहानी में बुन सकता है।
ये इतिहास को सिर्फ रैंडम घटनाओं का सिलसिला नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। ये सारे विचार सिर्फ जेनेसिस को समझने में ही नहीं बल्कि शायद जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे सकते हैं।
तो ठीक है, ये सब काफी गहरे और दिलचस्प विचार हैं, लेकिन इनका हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब हो सकता है? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं?
मुझे लगता है बिल्कुल। एक तो शायद अपनी गलतियों और असफलताओं को देखने का तरीका बदल सकता है। जैसे ईश्वर ने याकूब जैसे फ्लॉड अपूर्ण चरित्र का इस्तेमाल अपनी बड़ी कहानी में किया, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी कमियां या गलतियां कहानी का अंत नहीं है।
हाँ, ये हमें खुद के प्रति और शायद दूसरों के प्रति भी थोड़ी ज्यादा दयालु होने में मदद कर सकता है ना? हम सब गिरते हैं उठते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, पारिवारिक रिश्तों की मुश्किलों को समझने में मदद मिल सकती है। जेनेसिस में परिवारों की कहानियां बहुत कच्ची और असली हैं। भाई भाई में जलन, माँ बाप का पक्षपात, धोखा, ये सब है।
हाँ, आजकल के परिवारों से बहुत अलग नहीं लगता कभी कभी।
सही कहा। इन कहानियों को, खासकर यूसुफ की माफी और सुलह की कहानी को देखकर शायद हमें अपने रिश्तों की उलझनों को समझने और उनसे डील करने का कोई नया रास्ता मिले।
तीसरा, किसी भी गहरे या फाउंडेशनल टेक्स्ट को पढ़ने का एक तरीका सीखना। रॉबिन्सन जिस तरह धैर्य से, उदारता से, बारीकी से पढ़ती हैं, वो तरीका हम किसी भी महत्वपूर्ण किताब पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या सेक्युलर। सतह से नीचे जाना, सवाल पूछना, जटिलता की सराहना करना,
और शायद विश्वास और संदेह को लेकर एक ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया अपनाना। इब्राहिम का विश्वास कोई आंख बंद करके मान लेने वाली चीज नहीं थी, उसमें सवाल थे, डर था, हिचकिचाहट थी।
तो ये मान्य करता है कि शक करना स्वाभाविक है।
हाँ, ये बताता है कि सच्चा विश्वास शायद सवालों का ना होना नहीं बल्कि सवालों के बावजूद एक वादे पर भरोसा करने की इच्छा है।
और आखिर में शायद मुश्किल हालात में भी एक उम्मीद, एक प्रोविडेंस की भावना विकसित करना। जेनेसिस का विश्व दृष्टिकोण, जैसा रॉबिन्सन उसे पढ़ती हैं, वो निराशा और सिनिज्म का एक मजबूत जवाब देता है।
हाँ, ये हमें व्यक्तिगत दुख या दुनिया की बड़ी समस्याओं के बीच भी कृपा और मुक्ति के संकेतों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये एक तरह से होप का नजरिया है। मेरे लिए तो इस पूरी किताब और हमारी बातचीत से सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी टेक्स्ट को, किसी कहानी को नई आंखों से और खुले दिल से पढ़ने की ताकत क्या होती है। रॉबिन्सन हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी पहले से बनी राय को थोड़ा किनारे रखकर किसी चीज की गहराई में उतर सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये समझना था कि जेनेसिस में जो हमें समस्याएं या नैतिक मुश्किलें दिखती हैं, वो अक्सर टेक्स्ट की नहीं बल्कि हमारे पढ़ने के तरीके की देन होती हैं। जब रॉबिन्सन इसे एक पूरी जुड़ी हुई कहानी की तरह पढ़ती हैं, तो एक आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत और हाँ, करुणामय तस्वीर उभरती है।
एक ऐसे ईश्वर की तस्वीर जो इंसानों की गरिमा का सम्मान करता है और इंसानी इतिहास की उथल पुथल के बीच भी अपने वादे को पूरा करने में लगा हुआ है।
तो शायद आखिरी विचार ये हो सकता है, क्या होता है जब हम अपनी जानी पहचानी कहानियों को, चाहे वो किसी भी परंपरा से हों, थोड़ी ज्यादा करुणा और थोड़ी ज्यादा साहित्यिक समझ के साथ दोबारा पढ़ते हैं?
क्या वो कहानियां हमें सिर्फ अपने अतीत के बारे में बताती हैं या हमारे अपने बारे में भी बहुत कुछ कह जाती हैं? ये सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।